नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए परमेश्वर के निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर ने इसराइलियों से वाचा बांधी और उसमें हमने यह भी देखा कि एक शर्तपूर्ण वाचा थी और दूसरी बिना शर्त की वाचा। लेकिन हमने यह पाया कि इसराइलियों ने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन नहीं किया और जिसके कारण से उन्हें कष्टों को भोगना पड़ा, अर्थात कई नगर बंजर बन गए। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 30 से आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे पलिस्तियों की वाचा। इसे ध्यान से पढ़ें और आप देखेंगे कि इस वाचा में कहीं भी यदि शब्द नहीं आया है। ये बिना किसी शर्त के किए गए वायदे या वाचा है जो भविष्य की आशीषें हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण के पुस्तक 30 अध्याय उसके 1 और 2 पद को। लिखा है, फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने। मेरे मित्रों, यहाँ पर 7 बड़े वायदे हैं जो परमेश्वर करता है। वह ऐसे वाक्य को बनाता है जो बिना किसी शर्त के हैं। पद 1 बताती है कि वह सब राज्यों में बट जाएंगे, एक देश अपनी अविश्वास योग्यता के कारण नाश कर दिया जाएगा और ऐसा हो भी गया। पद 2 हमें बताती है कि वे तितर बितर होने के समय भविष्य में इसराइल अवश्य ही पश्चाताप करेगा, वह परमेश्वर के सम्मुख आएगा। कोई अगर पूछे कि क्या उनकी वापसी आज्ञाकारिता पर निर्भर है, यह समझ में आता है कि यदि वे अनाज्ञाकारिता की वजह से तितर बितर हुए थे तो वे अपनी आज्ञाकारिता की वजह से वापस भी आ जाएंगे। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। अनुग्रह की रीति है, व्यवस्था की नहीं। वे वापस इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वे आज्ञाकारी हैं। वे वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे आज्ञाकारी ठहरे हैं। परमेश्वर उन्हें उस भूमि पर वापस लौटाएगा। इसराइल को एक बार फिर से अपने देश में लौटाना पुराने नियम की 12 बड़ी भविष्यवाणियों का विषय है। हम आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करेंगे जब हम उनके पास पहुंचेंगे। तो आइए इस समय हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। मेरे मित्रों, यह पद बताती है कि उनका मसीहा वापस आएगा। ध्यान दें कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पवित्र शास्त्र में यह पहली बार बताया गया है कि मसीह संसार में आएंगे। जब हम यहूदा की पुस्तक में जाते हैं तो पाते हैं कि हनोक इस बात को बताता है कि मसीह वापस आ रहा है, लेकिन यह पुराने नियम में कहीं भी नहीं लिखी गई है। यह एक ध्यान देने वाली भविष्यवाणी है और यह अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक कि यह भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी तब तक वह देश कभी आशीषित और शांतिमय नहीं हो पाएगा। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण के पुस्तक 30 अध्याय उसके 4 और 5 पद में। लिखा हुआ है, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से लेकर इकट्ठा करेगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसको तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा, और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का चौथा बड़ा वायदा है, इसराइल को अपने देश में पुनः इकट्ठा या एकत्रित होना है, एक बिना शर्त वाला वायदा। जैसा कि पद 4 साफ हमें बताती है कि चाहे किसी भी तरह से लोग बिखरे हुए या भटके हुए या तितर बितर क्यों ना हो, भविष्य में परमेश्वर उन्हें इस देश में वापस ले आएगा। तब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा वायदा राष्ट्रीय परिवर्तन का होगा। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। मित्रों, हम पाते हैं कि यही वायदा यरमिया और होशे में और पौलुस के द्वारा रोमियों के पत्र में लिखा हुआ है। और छठी बात यहाँ इसराइलियों के शत्रुओं के न्याय के बारे में बताती है। इसराइल वापस लौटकर परमेश्वर की बातों का पालन करेगा और यह अनुग्रह का नियम है, तब उसके शत्रुओं का न्याय होगा। हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझ से बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। मेरे मित्र, ध्यान दें कि अंत में सातवीं अद्भुत बात यह है कि इसराइल अपनी सारी आशीषें प्राप्त करेगा। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। वापस आने का दिन कौन सा है? क्या यह अभी हो रहा है? हम रूढ़िवादी नहीं हो सकते जिसको हम नहीं जानते हैं। यह बिल्कुल साफ बात है कि जब वे देश में वापस लौटेंगे तो वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के कारण ही लौटेंगे। उनके लिए उस देश में उस समय तक आशीषें नहीं थी जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें नया हृदय नहीं दिया। वे आज्ञाकारिता के साथ वापस आएंगे और यह समय होगा जब परमेश्वर उन्हें उस देश में वापस लाएगा। मेरे मित्रों, वर्तमान समय में इसराइल परमेश्वर के सम्मुख आज्ञाकारिता के साथ नहीं आ रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि इसराइल की यह वापसी जो वाचा की प्रतिज्ञा के अनुसार है, यह अभी भी भविष्य में पूरी होनी बाकी है। यह बिना किसी शर्त के है, क्योंकि यह परमेश्वर है जो उन्हें उस देश में वापस लाएगा। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसके 11 से 14 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुन्द्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुन्द्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। मेरे मित्रों, इसराइल कोई भी बहाना नहीं कर सकता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानता। परमेश्वर ने यह अधिकार सीधा उन्हीं को दे दिया और वे जानते भी हैं। हमारे पास भी यह जिम्मेदारी है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां सुसमाचार सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। फिर भी मेरे मित्रों, हमें उद्धार पाने के लिए स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। आपको उसे प्राप्त करने के लिए समुन्दर पार नहीं करना है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि वह आपके ही निकट है, या इतना करीब है जितना कि आपका रेडियो, या इतना करीब है जैसे कोई प्रचारक या कोई विश्वासी आपको परमेश्वर का वचन सुनाता है और जिसे आपने सुना भी है। उस बात पर कार्य करने के लिए आप जिम्मेवार हैं। मेरे मित्र, यहीं पर आपकी स्व इच्छा सामने आती है। परमेश्वर के वचन को ढूंढना मेरा काम है और मैं कोशिश करता हूं कि इसे सीधे रेडियो के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचाऊं और छपे हुए पन्नों के द्वारा सीधा आपकी आंखों तक। यह मेरी सीमा है जहां तक मैं जा सकता हूं, और उसके बाद यह आप पर है। ध्यान दें, पद 12 व 13 में प्रेरित पौलुस के द्वारा रोमियो में इस्तेमाल की गई है। हम इसे रोमियो के पत्री 10 अध्याय 6 से 10 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराओं में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे मित्रों, पौलुस ने यह नहीं कहा कि मूसा ने ऐसा कहा है, बल्कि विश्वास की धार्मिकता वक्ता है। पौलुस न्याय के लिए विश्वास का कोई विकल्प नहीं ले रहा है। व्यवस्था विवरण का यह अनुच्छेद एक भविष्यवाणी है जो बताती है कि एक दिन इसराइल अपने हृदय और आत्मा से फिरकर परमेश्वर के पास आएगा। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसके 10 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे याकूब को तेरे नियम और इसराइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। और ऐसा लगता है कि परमेश्वर इसराइल के साथ एक नई वाचा बनाएगा। हम यर्मिया की पुस्तक 24 अध्याय और उसके 7 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय उसके 33 पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। तब हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 8 पद में, जहां पर उसका लेखक इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। मेरे मित्रों, मसीह ही है जो इस वाचा को लागू करेगा, जो कि अभी भविष्य में है। विश्वास के द्वारा धार्मिकता नबी और न्याय की गवाह है। इस दौरान कोई जरूरी नहीं है कि मसीह को नीचे लाने के लिए स्वर्ग में चढ़े जाएं। वह पहले ही एक बार आ चुका है और हमारे लिए मर गया है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे मृतकों में से जिलाया जाए, क्योंकि वह पहले ही से मृतकों में से जी उठा है। उनके पास 1500 वर्षों से व्यवस्था थी और वे जानते थे कि यह उनके लिए एक धार्मिक विधि है। यह उनमें धार्मिकता को नहीं लाया। मसीह उनके पास आप ही एक व्यवस्था के जैसे आया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत दूर था। मसीह उनके बीच में से ही आया। वह मरा और फिर से उनके बीच में ही जीवित हो उठा। उनमें विश्वास की धार्मिकता मौजूद थी, जैसा कि आज हम में है, क्योंकि इसे हमारे मध्य में वर्षों से बताया जा रहा है। व्यवस्था ने दोनों की गवाही दी है, व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता और विश्वास के द्वारा धार्मिकता। यह व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में की आज्ञा नहीं है, परंतु आज्ञा है। व्यवस्था की धार्मिकता ने उद्धार को नहीं लाया, परंतु विश्वास की धार्मिकता उद्धार को लाता है। मित्रों, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय को अच्छी तरह देखने के बाद हमें पता चलता है कि पौलुस सटीक अवतरण नहीं दे रहे हैं, परंतु वह उस अध्याय का प्रयोग कर रहे हैं। चुकंदर का उदाहरण केवल प्रासंगिक है। मित्रों, यह इस बात को प्रकट करता है कि मूसा व्याख्या करने और कुशलता का सटीक उदाहरण है। अब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। मेरे मित्रों, उनका इस देश में बना रहना उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करेगा। वह उनके भविष्य की रूपरेखा को खींचते हुए कहता है कि जब वे अनाज्ञाकारिता को करेंगे, अर्थात आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो उन्हें इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह उन्हें वापस लेकर आएगा और अंत में वह उन्हें वापस लेकर आएगा और वे फिर कभी बाहर नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे एक अच्छी वाचा को बांधा है। वह उन्हें वापस लेकर आएगा और वे फिर उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मित्रों, हमारे साथ में भी ठीक इसी प्रकार से होता है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें। उसके पश्चात वह हमसे आज्ञाकारिता के विषय में बातचीत करता है। यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का भी पालन करें। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, प्रेम और आज्ञाकारिता व्यवस्था विवरण के पुस्तक के सर्वोच्च विषय हैं। जब यह विषय उन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो ये विषय हमारे अनुग्रह के दिनों में भी और अधिक महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? जबकि हमें बहुत अधिक प्रकाशन दिया गया है, हमें बाइबल के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से बताया गया है। क्योंकि हमें अधिक दिया गया है, तो हमारी जिम्मेवारी भी अधिक बढ़ जाती है। एक बात मैं बड़ी जिज्ञासा के साथ में कहता हूँ और मांगता हूँ कि मुझे हमेशा उसके नजदीक रखा जाए। मेरे दोस्तों, हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक बने रहना चाहिए, और यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि वह मनुष्य बनकर इस जगत में आया, मेरे लिए, आपके लिए, हम सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए उसने दुख उठाया। वह हमारे लिए मारा गया, वह हमारे लिए गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, ताकि हम उस शांति को प्राप्त करें, उस आनंद को प्राप्त करें। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में शांति हो, आपके जीवन में शांति हो? आपको करना क्या है? सिर्फ यही कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपने जीवन में उसे आमंत्रित करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। आपको किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप उस पर भरोसा रखें। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 30 खत्म होता है। लेकिन हम फिर आगे बढ़ेंगे और अध्याय 31 से और कुछ मुख्य बातों को देखेंगे। अध्याय 31 में हम पाते हैं मूसा द्वारा आखिरी निर्देश। अब हम व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। इस भाग में अध्याय 31 से 34 में अंतिम बार मूसा के द्वारा व्यवस्था का दोहराया जाना है। मित्रों, मूसा द्वारा यह पांचवी बार है जब वह व्यवस्था को दोहराता है जिसे उसने सभी इसराइलियों को दिया जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं। हम मूसा के जीवन के अंतिम भाग तक पहुंच गए हैं और इस पृष्ठ तक पूरी बाइबल अर्थात पहली पांच पुस्तकें जो मूसा के द्वारा लिखी गई है, यह मूसा की महानता के बारे में बताती है। मिस्र देश से निकलने के पश्चात मूसा ही एक मुख्य व्यक्ति था। उसने अपने संदर्भ में 120 तथा इसराइल के विषय में 40 वर्षों की सेवा काल का ब्यौरा दिया है। अब वह मरने पर था। आइए हम व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। और मूसा ने जाकर यह बातें सब इसराइलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा कि आज मैं 120 वर्ष का हूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यर्दन पार नहीं जाने पाएगा। मेरे मित्रों, उसने स्वयं के बारे में 2 मुख्य बातें कही है। वह अब बूढ़ा हो गया है और हम सब बूढ़े होते हैं और इस बात को जानते हैं, और हम में से अधिकतर 120 वर्ष तक जी नहीं पाते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। जब हम उस स्तर तक पहुंचते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए उतने ही उपयोगी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी ताकत खत्म हो जाती है। तो हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए उतने उपयोगी भी नहीं रह पाते हैं, और मूसा इस समय इस योग्य नहीं है कि वह उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचा सके। इस बात को परमेश्वर ने उसे स्पष्ट कर दिया था कि वह अब नहीं बल्कि कोई दूसरा अगवा उनको आगे लेकर जाएगा। अब मूसा अगुए के पद पर और ज्यादा नहीं रह पाएगा। हम व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा, और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। मेरे मित्रों, मूसा ने यहोशू को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि मूसा के बाद यहोशू इसराइलियों का नेतृत्व करे और अगुए के कार्यभार को संभाले। अगर चुनाव का कार्य मूसा को दिया जाता तो मैं सोचता हूँ कि वह यहोशू को नहीं चुनता। वास्तव में कालिब यहोशू से ज्यादा प्रभावशाली दिखता था और उसके लिए सामान्यतः या प्राकृतिक रूप में उसे अगुए के रूप में चुनना अच्छा लगता। कुछ भी हो, मूसा भी तो एक मनुष्य ही था और हो सकता है कि वह अपने बाद अपने बेटे को ही अगुए के रूप में चुनता, जैसा कि आज यह प्रथा है कि लोग सेवा करते हैं और अपने बच्चों को ही चुनाव करते हैं ताकि संस्था का या सेवा का संचालन करें। यही प्रथा थी जिसके तहत मिस्र में फिरौन एक अगले अगुए को चुनता था, और यह बात मूसा के लिए बड़ी साधारण होती। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को यर्दन पार कराने के लिए चुना। अब मूसा की इतनी आवश्यकता नहीं थी। इससे हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के कार्यक्रम के लिए हम इतने ज्यादा आवश्यक नहीं हैं या हमारी इतनी अहमियत या जरूरी नहीं है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके समय में उपयोग करता है, क्योंकि जब मनुष्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब भी परमेश्वर का कार्य चलता रहता है। मैं एक प्रभु के दास को याद करता हूँ जो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं इस कार्य से सेवानिवृत्त नहीं होना चाहता, कार्य के लिए बहुत जरूरी है कि मैं रहूं। और कुछ ही समय के पश्चात उस प्रभु के दास का देहांत हो गया और कार्य पहले से ज्यादा बढ़ गया, विपरीत इसके कि वह व्यक्ति जीवित रहता था या जीवित था। हम सोच सकते हैं कि हम बहुत ही आवश्यक हैं, हम ऐसा सोचते भी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब हमारा कदम बढ़ाने का समय आता है तो परमेश्वर उस समय किसी और को उस स्थान पर खड़ा कर देता है जो योग्य है, और कुछ इसी प्रकार की बात यहाँ पर मूसा के साथ में भी हो रही है। हम व्यवस्था विवरण 31 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। मित्रों, मूसा लोगों को प्रोत्साहन देता है कि शत्रु और अन्य जातियों से न डरें। आप पाएंगे कि मूसा इस पीढ़ी को बार बार प्रोत्साहित करता रहता है। वह उन्हें बार बार बताता है कि तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है, क्योंकि वह कादेश बर्निया के अनुभव से गुजर चुका है, जिसमें पुरानी पीढ़ी के लोग मर मिटे और जंगल में ही नाश हो गए। इसलिए मूसा इस नई पीढ़ी को बार बार उत्साहित करता है कि वे आगे बढ़ते जाएं, और उन्हें आश्वासन देता है कि परमेश्वर उन्हें अगुवाई प्रदान करेगा ताकि वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंच सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर मूसा को अपने रीति से अपने समय पर इस्तेमाल किया, और आज वह मेरे जीवन को और आपके जीवन को भी उपयोग करना चाहता है। मुझे और आपको भी उस प्रतिज्ञा के देश अर्थात स्वर्ग में ले जाना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप उसके राज्य में प्रवेश करें, उद्धार और आनंद को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज ही आप परमेश्वर की निकटता में आए, उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। इस वचन में बने रहें और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है। जिसने दिया है उसी ने।